நமோ ராமதானம் நமோ சித்தானம் நமோ ஐரியானம் நமோ வச்சாயானம் நமோ லோயே சௌசாமம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோ யமி மங்களம் குந்த குந்தாரியோ ஜெயன தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மானாம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம் வந்தே து சௌவசித்தே மனோமங்கலிம்பத்தே ஓச்சாமி சமய பாவுடு நமோ சுத கேவலி பணியம் நம சமய சாராய சுவானுபூத்தியாச்சகாசதே சித் ஸ்வபாவாய பாவாய சர்வ பாவாந்தர நீசங்க ஹை ஜோ ஆயு சம நிரலேப ஹை ஆகாஷ சே நிஜ ஆத்மா மே ஹி விஹரதே ஜீவன பர கியாஸ சே ஜின்கே நிகட சிஹா பசு பூல ஜூரதா குண திவ்யகுரு அபோ கசி அலோகிகூரதா 144 நம்பர் கி கதா கதா பாட் சம்மத் தன்சனானம் ஏசோலஹதித்தி நவரிவவதேசம் சவனய பக்கரஹிதோ வணிதோ ஜோசோ சமயசாரோ சம்யாத்வதே மஜ்ஞானநீஜே ஏகனே சங்யா நய பக்ஷ சகல ரஹித பாக்யோ தே சமய நோசார பக்ஷாதி க்ராந்த ஏவ சமயசார இதி அவதிஷ்டதே. க்யா கேத்தே இஸ் காதா மே யே உத்தானிகா ஹே ஔர் இஸ் உத்தானிகா மே गाथा में आने वाले विषय को बताया. किरण भाई क्या बताया कि पक्षाति क्रांत एव समय सार. क्या कहा कि जो समय सार है वो पक्षाति क्रांत है. 143 नंबर की जो गाथा है वो साधक की है बाबू भाई और 144 नंबर की गाथा साध्य की गाथा है. जैसे आचार्य कुंद कुंद अमृतचंद्र अमृतचंद्राचार्य टीका में लिखते हैं कि समयसार की टीका कैसे लिखता हूँ कि आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन परापर गुरु का उपदेश और चौथे नंबर पर स्वानुभूति. तो स्वानुभूति से ये मेरा निज वैभव है और उस निज वैभव से मैं समयसार की रचना टीका की आत्मख्याति की रचना करता. आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे वो जो शब्द हैं वो अनुभूति से आए. आचार्यों के शब्द सुने हुए नहीं आए. कहाँ से आए? अनुभूति से आए. इसलिए कहते हैं कि प्रमाण करना. सुनी सुनाई बात होती तो प्रमाण मत करना. लेकिन ये सुनी हुई बातें नहीं हैं. ये कैसी बातें हैं? अनुभूति की बातें हैं. और 43वीं गाथा में ठीक इसी तरह का विषय बताया. ज्ञानी की और केवली की तुलना की है। 143वीं गाथा किसकी तुलना की है? ज्ञानी की और केवल ज्ञानी की। केवल प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है, जाति का भेद नहीं है। किसका भेद है? प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है, जाति का भेद नहीं है। ये बात रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी आती है। ज्ञानी के अनुभूति में और केवल ज्ञानी की अनुभूति में क्या फर्क है? कि वैसा कोई फर्क नहीं है, जाति अपेक्षा फर्क नहीं है। केवल किसका फर्क है? प्रत्यक्ष और परोक्ष का फर्क है, जाति की अपेक्षा कोई फर्क नहीं है। 43वीं गाथा में केवल वो नय के द्वारा बताया। केवल ज्ञानी नयों को, दोनों को जानते हैं, उनके नय नहीं है, लेकिन दोनों नयों के विषय को जानते हैं, लेकिन राग द्वेष के अभाव में कोई पक्ष नहीं है। ज्ञानी भी चतुर्थ गुणस्थान वाला स्वामी जी ने तो इसके व्याख्यान में 144वें नंबर की गाथा के व्याख्यान में कई जगह कहा है कि लोग ये कहते हैं कि सातवें गुणस्थान में सम्यक दर्शन होता है, वो बात यहां नहीं है। चौथे गुणस्थान की बात है। कौन से गुणस्थान की? चौथे गुणस्थान की बात है। ये कोई सातवें गुणस्थान की बात इस गाथा में नहीं कही है। ज्ञानी और केवल ज्ञानी में कि ज्ञानी कौन, 43वीं गाथा की उत्थानिका में क्या कहा है कि पक्षाति क्रांतस्य स्वरूपं किम्। हेमचंद जी साहब, क्या है उत्थानिका? पक्षाति क्रांतस्य स्वरूपं किम्। और अंत में क्या कहते हैं? अनुभूति एव समय सार। अंत में टीका में क्या कहते हैं कि अनुभूति एव समय सार। इसका भाव क्या है कि जिसने शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा की अनुभूति की वो पक्षातिक्रांत है। पक्षातिक्रांत कौन? कि मैं पक्षातिक्रांत हूं क्या नहीं, कि अभी पक्ष में ही हूं। नापने के लिए थर्मामीटर अपने पास दिया। कौन सा थर्मामीटर दिया? कि अनुभूति ये पक्षातिक्रांत का स्वरूप है, इसीलिए अब 144वीं गाथा में पक्षातिक्रांत एव समयसार। क्या समयसार कौन है? कि पक्षातिक्रांत ही समयसार है, इति यह बात अवतिष्ठते सिद्ध होती है। क्या सिद्ध होती है? कि पक्षातिक्रांत एव समयसार, जो पक्षातिक्रांत है वही समय सार है, इति यह बात अवतिष्ठते सिद्ध होती है। किससे सिद्ध हुई? कि पूर्व पक्ष में 143 नंबर की गाथा में जो कहा अनुभूति एव समय सार है, अनुभूति ही समय सार है। स्वामी जी तो जापानी व्यक्ति का उदाहरण खुद जैन दर्शन क्या है कि अनुभूति ही जैन दर्शन है, और यहाँ अनुभूति ही पक्षातिक्रांत का स्वरूप है। इसीलिए क्या सिद्ध हुआ कि पक्षातिक्रांत एव समयसार, कि पक्षातिक्रांत ही समयसार है। अब थोड़ी बहुत संस्कृत की बात इतनी सी है कि पक्षात अतिक्रांत पक्षात अतिक्रांत। किरण भाई इतना तो समझ में आता है कि पक्ष से, जैसे ये पंचमी विभक्ति है संस्कृत में, स्वामी जी ने भी संस्कृत के शब्दों के द्वारा इसकी व्याख्या की है। व्यपदिश्यते, तीन जगह शब्द आया स्वामी जी के प्रवचनों में, व्यपदिश्यते, व्यपदेश, ये शब्द आए कि पक्ष से अतिक्रांत। पक्ष से अतिक्रांत का मतलब क्या है कि संस्कृत व्याकरण में पंचमी विभक्ति का प्रयोग वहां होता है जैसे घर से दूर, मतलब घर की तरफ उसकी पीठ है, घर से वो निकल गया। पक्षात अतिक्रांत, पक्ष से वो निकल गया, पक्ष से जो निकल गया वो पक्षातिक्रांत है। तो तो पक्षात अतिक्रांत, वो पक्षातिक्रांत। एक अर्थ ये भी है कि पक्षातिक्रांत का अर्थ क्या है कि जैसे कहते ना कि नदी पार करते ही मेरा घर है, एक अपेक्षा ये भी है कि पक्ष से पार होते ही समय सार है। भाव समझ में आ गया कि पक्षातिक्रांत जैसे नदी पार करते ही एड्रेस बताते ना कि आप कहाँ रहते हो कि वहाँ उस जगह आ जाना, उसको पार करते ही सामने जो बंगला है वो मेरा ही, जिसके ऊपर शुद्धात्म सदन लिखा हुआ है वो मेरा ही बंगला है, इसके पार करते ही, पक्षों को पार करते ही। एक अर्थ ये भी, चार अर्थ है इसके पक्षातिक्रांत कि पक्ष बंगले को उसको चौराहे को पार करते ही जैसे मेरा घर है वैसे ही पक्षों को पार करते ही। देखो स्वामी जी ने तो कहा कि मैं शुद्ध हूं, इतना जानने वाला जीव पक्ष में आंगन में आया, क्या उदाहरण दिया, अभी घर में नहीं पहुंचा, आया कहां, आंगन में आया। यहां तक आने के लिए भी पुण्य काफी खर्च हुआ है, लेकिन अभी अंत नहीं आया कि मैं शुद्ध हूं। ये विकल्प वस्तु जैसा है लेकिन इस विकल्प में वस्तु नहीं है, है? कि विकल्प भी स्वामी जी ने तो खूब खोला है, उन्हीं के बोल रहे हैं, हम तो कोई अलग से, हमारी शक्ति भी नहीं इतनी है कि व्यवहार की बात तो यहां है नहीं कि मैं रागी हूं कि द्वेषी हूं कि कर्म से बंधा हुआ हूं, ये व्यवहार की बात तो यहाँ है नहीं, लेकिन मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एक हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ। व्यवहार का निषेध निश्चय से होता है, निश्चय का निषेध अनुभूति से होता है। व्यवहार का निषेध निश्चय से होता है और निश्चय का निषेध अनुभूति से होता है। व्यवहार का पक्ष छूट गया, निश्चय के पक्ष में आ गया, लेकिन निश्चय के पक्ष में भी अनुभूति नहीं है, निश्चय से पार है वो अनुभूति है। और ये काम यहाँ एक बार कर लेना चाहिए किरण भाई, क्यों कि स्वामी जी जैसे व्यक्ति का संयोग है, मूल तत्व को दिखाने वाले गुरु का संयोग बार बार हो ये कोई जरूरी नहीं है। वो तो बार बार कहते हैं कि पर्याय छूटने के बाद जैसे बबू का में वो क्या होता है, तिनका और सूखा पत्ता, वो कहाँ गिर जाएगा कोई पता नहीं है। ऐसे ही ये पर्याय समाप्त होते ही आगे कहाँ जाएगा कोई पता नहीं है। पक्ष लेकर बैठा है लेकिन पक्षातिक्रांत होने के लिए बैठा है तो लक्ष्य सही है। पक्ष अनादि काल से ही पक्षातिक्रांत नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पक्ष में ही जीव उलझा पड़ा है। स्वामी जी के शब्दों में कहे कि ये विद्वत्ता की गाथा नहीं, क्रिया कांड के धमाल की गाथा नहीं, कि मैं विद्वान हूं इतना जानता हूं, ये क्षयोपशम के मर्म की बातें यहां मत कर, मैं क्षयोपशम से भिन्न चैतन्य तत्व हूं ऐसी बात कर तो पात्रता है। इस गाथा के व्याख्यान में स्वामी जी कहते हैं कि सच्चा निर्णय करना ये पात्रता है और उस पात्रता का फल पक्षातिक्रांत बना है। क्या कहा कि सच्चा निर्णय करना ये पात्रता है अपने स्वरूप का, बाकी दुनिया भर के स्वरूप का निर्णय अनंत बार हुआ। इस गाथा में क्या कहा, सूक्ष्म से सूक्ष्म पने भी जान लिया, लेकिन मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूं ये पक्ष कभी आज तक जीव को नहीं आया, इसका पक्ष आए बिना पक्षातिक्रांत नहीं होता है। पक्षातिक्रांत का तो एक अर्थ ये था कि पक्षात अतिक्रांत, पक्ष से अतिक्रांत हो जाना, कि पक्ष का अर्थ ये है विकल्प। विकल्प ज्ञानियों के भी होते हैं, ये विचार भी आज करना है कि पक्ष और विकल्प में अंतर है, पक्ष और विकल्प में अंतर है। चेतन भाई, कि पक्ष में और विकल्प में क्या अंतर है? कि पक्ष के साथ, जयचंद जी छाबड़ा साहब ने लिखा है कि पक्ष के साथ मिथ्यात्व सहित राग की उत्पत्ति होती है, और विकल्प तो ज्ञानी के भी होते हैं, विकल्प तो ज्ञानी के भी होते हैं। कि विकल्प होना ये पक्ष में होना नहीं है, कि जिस विकल्प के साथ मिथ्यात्व सहित राग की उत्पत्ति होती है उसको राग, यहाँ पर विकल्प का। वो सुबह जो संकल्प विकल्प आप चला रहे दसवीं गाथा के भावार्थ में, वो अलग अपेक्षा। यहाँ क्या कहते हैं कि जो विकल्प और पक्ष में अंतर है, क्या अंतर है? कि पक्ष के साथ मिथ्यात्व सहित राग की उत्पत्ति होती है, और ज्ञानी ठीक वैसा ही विकल्प करते हुए भी उनको पक्ष क्यों नहीं है? बात समझ में आ गई? क्योंकि दिलीप भाई, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि चैतन्य गायक ध्रुव भगवान आत्मा पर है, इसलिए वैसा जानते हुए भी, वैसा कहते हुए भी ज्ञानी के विकल्प नहीं है। और अज्ञानी को ठीक वैसी परिस्थिति में होने पर पक्ष क्यों है? क्योंकि अज्ञानी की दृष्टि चैतन्य गायक ध्रुव भगवान आत्मा पर नहीं है, ज्ञानी शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते। दृढ़ चैतन्य भगवान आत्मा का स्वरूप उनकी दृष्टि में है, इसलिए ज्ञान चाहे जहां खेले लेकिन पक्ष उनका नहीं होता है। अज्ञानी को पक्ष क्यों है? क्योंकि उसकी दृष्टि शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा पर नहीं है, इसलिए उसके पक्ष है। और यहाँ क्या कहते हैं कि पक्षाति क्रांत एव समयसार। एक विचार ये भी करना है कि समयसार कौन सा, कि पर्याय वाला समयसार, अनुभूति वाला समयसार, या त्रिकाली ध्रुव वो समयसार, इसका विचार करेंगे धीरे धीरे। बात समझ में आ गए? स्वामी जी ने सब खोला है, उनके अनुसार ही विचार करेंगे। कौन सा समयसार? क्या लिखा है यहाँ पर कि पक्षाति क्रांत एव समयसार। ये तो शब्द लिखे हैं कि समयसार पक्षाति क्रांत है, ये बात तो हमारे समझ में, यहाँ शब्दों से तो पकड़ में आ गई, लेकिन कौन सा समयसार? पर्याय वाला समयसार, पर्याय रहित समयसार, या चेतन भाई उपयोग में उपयोग कहो संवर अधिकार के अनुसार, या जो सुबह आप विषय चला रहे, दोपहर में भी चलाया कि अपने को भूलकर त्रिकाल रूप होने वाली पर्याय, उस पर्याय वो समयसार कौन सा समयसार? कि पक्षाति क्रांत समयसार है। ये बात तो समझ में आ रही नवीन भाई? समझ में आती है बातें कि समयसार कैसा, कि पक्षाति क्रांत है, लेकिन कौन से समयसार की चर्चा है यहाँ पर? देखो मजेदारी की बात कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये दो नाम जिसको मिलते हैं, प्राकृत गाथा में देख लीजिए, सम्मत दंशन नानम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, एसो मतलब ये दो नाम लहदी प्राप्त होते हैं, मिलते हैं किसको? जिस समयसार को पक्षाति क्रांत बताया उस समयसार को ये दो नाम मिल रहे हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। इसमें नवरी शब्द बहुत अच्छा है, नवरी शब्द है ना इसमें, नवरी मात्र, नवरी का अर्थ होता है केवल, मात्र, फकत, सिर्फ, ये दो नाम मिलते हैं। तो दो नाम सिर्फ मिलते हैं या सिर्फ उस त्रिकाली ध्रुव चैतन्य को ये दो नाम मिलते हैं? भाषा का अंतर समझ में आ गया? वह तो अनंत गुणों का धारी है, पक्षातिक्रांत होते ही अनंत गुणांश सम्यक, अनंत गुण वाला सम्यक तो प्रकट होता है, तो उसको तो अनंत नाम मिल सकते हैं। कितने नाम मिल सकते हैं? अनंत नाम मिल सकते हैं, लेकिन यहां दो ही नाम बताए। कौन से नाम बताए? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। स्वामी जी कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र भी प्रकट होता है, परंतु उसको गौण करके ये कथन है। सिद्धांत समझ लेना चाहिए। क्या बताया? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये दो नाम किसको मिल रहे हैं? पक्षातिक्रांत समय सार को ये दो नाम मिलते हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दो नाम उसको मिलते हैं। और नवरी कहकर के ये कहते हैं कि ये जो दो नाम दिए जा रहे हैं, ये दो नामों का अधिकारी वह चैतन्य देव ही है। कौन सा चैतन्य देव? कि जिसके टीका में अंत में शब्द आएंगे, देख लीजिए संस्कृत टीका अंत में, कि सम्यक दृश्यते ज्ञायते च। क्या शब्द है? सम्यक दृश्यते ज्ञायते च। थोड़ा बहुत संस्कृत का भी पढ़ लेना। क्या लिखा है? सम्यक दृश्यते ज्ञायते, कि जब उसको देखा जाता है तो सम्यक दर्शन नाम मिलता है। वस्तु दो नहीं है, नाम दो दिए गए हैं। भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा साहब की जो ढूंढारी भाषा का भावार्थ है, उसमें ये बताया कि वस्तुएं दो नहीं है, एक वस्तु के दो नाम है। पकड़ में आ गई बात? वस्तु के नाम दो दिए गए। नाम दो कौन से? कि नाम दो का मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ऐसा नहीं रजनी भाई। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये दो नाम नहीं। सम्यक दर्शन और पक्षातिक्रांत समय सार, सम्यक ज्ञान और पक्षातिक्रांत समय सार, ऐसे जो दो नाम हैं, वस्तुएं दो नहीं हैं। क्या कहा? दो नाम हैं लेकिन वस्तुएं दो नहीं हैं। लेकिन ये नाम कब? स्वामी जी ने भी खोला इसको कि कौन से काल में ये नाम मिलता है। लोक व्यवहार में भी होता है ना कि दसवें दिन नाम रखा जाता है, बारहवें दिन। लोक व्यवहार में तो अनादिकाल का पक्ष है, वहां की चतुराई भी बहुत है। तो जैसे लोक व्यवहार में नाम दिया जाता है कि दसवें दिन, ग्यारहवें दिन, बारहवें दिन नामकरण होता है ना, तो ऐसे ही सम्यक दर्शन यह नाम देने का समय कौन सा, सम्यक ज्ञान यह नाम देने का समय कौन सा, इसकी भी चर्चा है कि इसका भी समय कौन सा, उसकी भी चर्चा अपन आगे करेंगे। अंत में क्या लिखा है देखो, अभी तो पढ़ना शुरू करेंगे लेकिन अंत की लिटी पढ़ लेते हैं। सम्यक दृश्यते च, जब यह चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा सम्यक तया दृश्यते दिखाई देता है और ज्ञायते जाना जाता है, तब उसे ये दो नाम दिए जाते हैं। देखो गाथा को देखो तो क्या कहा है कि नवरी, नवरी शब्द से ये कहा कि उस शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा को ही वही एकमात्र इन दो नामों को प्राप्त करने का अधिकारी है। नहीं आई बात समझ में? त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वस्तु अनादिकाल से शुद्ध है, आज भी शुद्ध है, और कोई आश्रय करे नहीं करे भविष्य में भी शुद्ध ही रहेगी, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है, वो सहज शुद्ध है। कोई उसका आश्रय करे तो करे, उसको किसी के आश्रय की आवश्यकता भी नहीं है। कोई करे तो शुद्ध है और नहीं करे तो शुद्ध है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि उसको ये दो नाम दिए गए, उसको नाम देने की भी आवश्यकता नहीं है, तीसरा अर्थ ये है कि पक्षाति क्रांत समय सार है, मतलब जो कभी आज तक पक्ष में आया ही नहीं, वर्तमान में भी नहीं और भविष्य में भी कभी पक्ष में आएगा नहीं, वो पक्षाति क्रांत है। ये भी एक अर्थ है। देखो एक तरफ तो कह रहे पक्षाति क्रांत, किसी भी प्रकार का पक्ष नहीं है, और फिर उसको दो नाम और दे रहे, ये भी एक पक्ष हुआ क्या नहीं, जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये दो नाम दे रहे हैं, ये भी पक्ष है क्या नहीं है। एक तरफ तो करे पक्षाति क्रांत है, फिर उसको दो नाम भी दे रहे हैं, उसकी भी चर्चा करते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, सव नय पक्ष रही दो, क्या लिखा है, सव नय पक्ष रही दो, सर्व नय पक्षों से रहित जो भणी दो, जो कहा गया सो समय सारो, वह समय सार है। उत्थानिका में क्या बात आई कि पक्षाति क्रांत ही समय सार है, और गाथा में क्या बात आई कि जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये दो नाम प्राप्त होते हैं और जो सर्व नए पक्षों से रहित है उसे समय सार कहते हैं। अब गाथा में सर्व नए पक्ष रहित बताया, और टीका में देखो दूसरी लाइन में कि अखिल नए पक्ष अक्षुण्णतया, क्या लिखा है दूसरी पंक्ति में कि अखिल सभी, सभी मतलब व्यवहार से लेकर परम शुद्ध निश्चय नय तक, कहां से कहां तक, व्यवहार से लेकर परम शुद्ध निश्चय नय तक जितने भी नय हैं उन सभी नयों से और नयों के पक्ष से अक्षुण्ण है, कैसा है, अक्षुण्ण है मतलब खंडित नहीं होता, कैसा है कि विकल्पों से वह खंडित नहीं होता, विकल्पों से खंडित नहीं होता मतलब विकल्प कितने भी आए और जाए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, विकल्प कितने ही करो वो अनुभव में नहीं आता, बात समझ में आ गई कि मैं शुद्ध हूं, ये जो विकल्प है इस विकल्प से वह अनुभव में नहीं आता, कितने ही विकल्प करे। छोटा सा उदाहरण है, जैसे गुड़ है, गुड़ ये शब्द है, गुड़ ये उसका वो मीठा है आदि लक्षण, चेतन भाई तो बता रहे लक्षण किसको कहते हैं कि जो अनादि अनंत काल तक रहे, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान लक्षण क्यों नहीं है, कि वो अनादि अनंत नहीं है, केवल ज्ञान भी अनादि अनंत नहीं है इसलिए वो लक्षण नहीं है। लक्षण किसको कहते हैं कि जो अनादि अनंत रहे वो लक्षण है, इस तरह की चर्चा। अब गुड़ है, गुड़ शब्द है, गुड़ का अर्थ भी है, गुड़ के लक्षण आदि भी है, लेकिन इन सब विकल्पों में मिठास की अनुभूति नहीं है, कि स्वाद में मिठास की अनुभूति है, लक्षण में शब्दों में उसकी अनुभूति नहीं है। और यहाँ की भाषा में कहे तो विकल्पों में समय सार की अनुभूति नहीं है, वो विकल्प से खंडित नहीं होता और विकल्प से अनुभव में भी नहीं आता। जैसा जैसी वस्तु है वैसा कोई विकल्प हो तो भी विकल्प से वस्तु अनुभव में नहीं आती। और जो विकल्पातीत की बात इसमें है, पक्षाति क्रांत की बात है कि जीव पक्षाति क्रांत कैसे हो, स्वामी जी तो कहते हैं कि इसमें साध्य भी है और साध्य को प्राप्त करने की विधि भी है। कितनी बातें इस गाथा में, साध्य भी है और साध्य को प्राप्त करने की विधि भी है, दोनों आएंगे, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की भी चर्चा आएगी, और उस साध्य को प्राप्त कर किस विधि से किया जाए, अर्थात पक्षाति क्रांत कैसे हो, ये विधि भी इसमें बताई। देखो अधिकार कौन सा है, कर्ता कर्म अधिकार। और हम तो सोच रहे थे कि इसमें तो कर्ता कर्म की चर्चा करेंगे, सामान्य प्रश्न होता है कि कर्ता कर्म की चर्चा करेंगे इस गाथा में, मतलब इस अधिकार में कर्ता कर्म की चर्चा जैसे प्रारंभ में है, उसके बाद भावे भावक की भी चर्चा है, और अंत में आते आते पक्षातिक्रांत की चर्चा शुरू होगी। क्योंकि कर्ता कर्म ये दोष है और भाव्य भावक भी दोष है, इन दोनों दोषों का अभाव पक्षातिक्रांत हुए बिना नहीं होता। ये दोनों दोष है, दोषों का अभाव कब होगा कि पक्षातिक्रांत होने पर दोनों दोषों का अभाव होता है। देखो दूसरी लाइन में कि अखिल नय पक्ष उससे अक्षुण्णतया अखंडित होता है, अखंड रहता है। इसलिए क्या लिखा है आगे कि नए पक्षों ने खूब जोर लगाया लेकिन उन नए पक्षों से उस पर कोई असर नहीं पड़ा। कैसे नहीं पड़ा, आगे लिखा है विश्रांत समस्त विकल्प व्यापार, जितने भी विकल्प थे उन सब विकल्पों का व्यापार क्या हो गया, कब कि जब चैतन्य गायक भगवान आत्मा श्रद्धा में आया, अनुभूति में आ गया, तो क्या हो गया कि समस्त विकल्पों के व्यापार विश्रांत हो गए। कहाँ समाप्त हो गए, कि जो दिखाई दिया और जिसके दिखाई देने पर विकल्पों को नष्ट नहीं करना पड़ा, विकल्प अपने आप नष्ट हो गए। गुण कैसा है जीभ पर रखते ही पता चल गया, बाकी गुण संबंधी जितने भी विकल्प थे ये कैसा होगा, किस तरह का होगा उसका स्वाद, वो सारे विकल्प जैसे ही गुण जीभ पर रखा वैसे ही सारे उसके विकल्प समाप्त हो गए। ऐसे ही पर्याय में चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा अनुभव में आते ही स्वामी जी ने इस गाथा में वो बात फिर याद की जो सामान्य रूप से गाथाओं में आती है कि अनुभव पर्याय में होता है लेकिन पर्याय का नहीं होता। अनुभव पर्याय में होता है लेकिन पर्याय का नहीं होता है। जिसका अनुभव होते ही सारे विकल्प, समस्त विकल्प, पहले ये था कि विकल्पों से खंडित नहीं हुआ, विकल्पों से चैतन्य गायक भगवान आत्मा खंडित नहीं हुआ, अनुभव में नहीं आया, और उसका जो स्वरूप है विकल्पों से खंडित नहीं होता और वो अनुभव में आए बिना विकल्प नष्ट नहीं होते। बात समझ में आ गई कि उसके अनुभव में आए बिना वो उसके संबंध में जितने भी विकल्प है वो नष्ट नहीं होते, विकल्प से खंडित नहीं होता। इसके खुलासे में स्वामी जी कहते हैं कि विकल्पों ने जिस वस्तु का विचार किया, क्या कहा, विकल्पों ने जिस वस्तु का विचार किया वस्तु उससे भिन्न नहीं निकलती। गुजराती में क्या है कि वस्तु कायिक बीजी जितनी निकले छे एम नथी, बिजली बीजी जातनी निकली छे एम नथी। विकल्पों ने जो विचार किया वो विचार वस्तु का ही किया, वस्तु वैसी ही निकलेगी। बात समझ में आ गई, लेकिन विकल्पों में वो वस्तु नहीं है। बात समझ में आ गई इसमें कि विकल्पों से वस्तु कोई जुदी जात की है ऐसा नहीं है, वस्तु तो वैसी ही है लेकिन वस्तु विकल्पों में नहीं है। बात समझ में आ गई। आगे क्या लिखते हैं स्वामी जी ने, क्या कहा कि फकत नए पक्षो वड़े खंडित नहीं ततो हुआ थी, कि नए के पक्ष से चैतन्य वस्तु खंडित नहीं होती। बात इतनी है, विकल्पों ने जो विचार किया वस्तु उससे से कोई अलग जाति की है ऐसा नहीं है। यहाँ तो केवल इतना ही कहते हैं कि विकल्पों में चैतन्य वस्तु नहीं है। जो विकल्प ही नहीं करते उनकी तो चर्चा देखो कितना पुण्य लेकर के बैठे हैं, कितना लेके बैठे हैं कि मूल तीर्थंकरों का उपदेश कुंद कुंद अमृतचंद्र स्वामी जी के माध्यम से यहाँ तक आया है। कहने का अर्थ ये है कि शुद्ध पक्ष तक ये जीव आया है। कहाँ पक्ष में है? अभी शुद्ध पक्ष तक आया है कि मैं शुद्ध चैतन्य गायक भगवान आत्मा हूँ। ये भी ऊंचे दर्जे का विकल्प है और ये भी ऊंचे दर्जे का पक्ष है। है विकल्प, है पक्ष, ऐसा निर्णय न करे तो स्वामी जी की भाषा में अभी पात्रता भी नहीं है, अभी उसकी पात्रता भी नहीं है। और पात्रता ही नहीं है तो अनुभूति कहाँ से कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसा निर्णय करे तो निर्णय करनारे जीव को ही अनुभूति होती है। जिसने अभी ऐसा निर्णय ही नहीं किया, जिसके निर्णय में ही अभी फेरफार है कि जिसने ऐसा, स्वामी जी तो कहते हैं कि निर्णय ऐसा करो कि फिर निर्णय नहीं करना पड़े एक बार तो ये निर्णय कर, ये निर्णय तो ऐसा कर कि फिर निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई? निर्णय ऐसा हो कि बार बार निर्णय करने की जरूरत न पड़े। ये छोटे मोटे कि मैं मनुष्य हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, ये तो वस्तु के अनुरूप निर्णय भी नहीं है। ये तो वस्तु के स्वरूप से बहुत दूर के निर्णय है। व्यवहार की बात इस गाथा में नहीं है कि मैं रागी हूँ, कर्म से बंधा हुआ हूँ। स्वामी जी ने तो इसमें 6 बातें बताई इस गाथा के अर्थ करने में। पहली बात तो ये बताई कि मैं बंधा हूँ, रागी हूँ, कर्म से बंधा हुआ हूँ, रागी द्वेषी हूँ, ये बात यहाँ नहीं है। बात समझ में आ गई? एक बात। दूसरी कि यहाँ जो कथन किया व्यवहार को गौण करके किया है। तीसरी बात यह है कि ज्ञान और दर्शन की मुख्यता से है, यद्यपि ज्ञान और दर्शन के साथ चारित्र का अंश भी प्रकट होता है। प्रकट न हो ऐसा नहीं है, लेकिन उसको गौण किया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये दो नाम मिलते हैं तो कोई प्रश्न करे कि चारित्र नाम मिलता है कि नहीं मिलता है, कि भैया उसको तो अनंत नाम मिलेंगे। वो नाम भी है उसमें शामिल, लेकिन उसको क्या किया? गौण किया। चौथी बात यह है कि विकल्पों से वस्तु खंडित नहीं होती, इसलिए प्रेरणा वाली बात है कि सम्यक विकल्प नहीं करे तो जीव पात्र भी नहीं, और सम्यक विकल्प नहीं करे पात्रता नहीं, और विकल्पों में ही उलझा रहे तो फल नहीं। क्या कहा? कि विकल्प न करे, ऐसे विकल्प ही नहीं आते कि मैं तो शुद्ध चैतन्य गायक ध्रुव परमात्मा हूँ, ये विकल्प न आए तो अभी पात्रता नहीं है, और विकल्पों में ही उलझा रहे तो फल नहीं, सिद्धि नहीं। कि स्वामी जी जैसे ज्ञानियों का सानिध्य हो जाए और पक्षातिक्रांत न हो तो क्या कहे? फिर क्या करना चाहिए? कि पक्ष तो अनादि काल से है, उसको कोई करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भाषा बदल गई। बात समझ में आ गई? अभिप्राय की वासना में तब तक बदलाव नहीं होता है जब तक त्रिकाली ध्रुव की अनुभूति नहीं होती। प्रकाश भाई तो कहते हैं कि अहम बुद्धि नहीं, अहम अहम बुद्धि नहीं, अहम की बात करो कि मैं शुद्ध चैतन्य त्रिकाली ध्रुव गायक परमात्मा हूं, ऐसी अनुभूति हुए बिना जीव पक्षातिक्रांत नहीं होता है। और पक्षातिक्रांत होना ही गुण है, पक्ष में रहना तो दोष है। कि मैं विद्वान हूँ, इस भाषा को जानता हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसी बातें तो अनंत बार हुई है। स्वामी जी कहते हैं कि 28 मूल गुणों का पालन भी छह डाला के आधार से भी ये बात सिद्ध होती है कि चारित्र की धमाल भी अनंत बार हुई लेकिन उसमें भी पक्षातिक्रांत नहीं हुआ। ज्ञान 11 अंग का ज्ञान भी अनंत बार हुआ लेकिन उसमें भी पक्षातिक्रांत नहीं हुआ। पक्षातिक्रांत होने के लिए 11 अंग का ज्ञान जरूरी नहीं है, 28 मूल गुणों का पालन भी जरूरी नहीं है। स्वामी जी तो जगह जगह सावधान करते हैं कि जीव यहाँ जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ संतुष्ट होता है। टोडरमल जी ने भी इस तरह की बात लिखी है कि प्राप्त पर्याय में तन्मय होना, और स्वामी जी कहते हैं कि थोड़ा सा करते ही उसको ये लगता है कि मैं बड़ा और बाजार ये कहता है कि जैसे ये इतना किया तो मैंने न जाने क्या किया, लेकिन करने योग्य काम तो एक ही था कि पक्ष में रहता हुआ पक्षातिक्रांत होने का प्रयत्न करता, पक्ष में रहता हुआ पक्षातिक्रांत होने का प्रयत्न करना चाहिए था। पांचवी बात ये बताई कि किसी भी नए का पक्ष अखंड चैतन्य वस्तु का तब तक दूर नहीं होता जब तक उसका अनुभव नहीं होता। और छठी बात ये बताई कि जैसी वस्तु है वैसा विकल्प हो लेकिन विकल्प में निर्विकल्प वस्तु का अनुभव नहीं होता। विकल्प विकल्प तो विकल्प रूप है और वस्तु कैसी है, निर्विकल्प रूप है। तो विकल्प दशा में विकल्प में निर्विकल्प वस्तु अनुभव में आएगी क्या नहीं आएगी है? स्वामी जी से प्रश्न किया कि बड़ा कठिन बात है, आखड़ी बात है, कि स्वामी जी ने उसका जवाब क्या दिया कि वस्तु स्वरूप कठिन नहीं है, है? कि जो स्वभाव है, स्वभाव स्वभाववान, स्वभाव के द्वारा स्वभाववान को प्राप्त करना कठिन नहीं है क्योंकि वो स्वयं है, पोतेज छे, ये कठिन नहीं है। समझ में आ गया? जीव को स्वभाव रूप परिणमन कठिन लगता है इसलिए वस्तु प्राप्त होना कठिन हो गई। उसमें कहा स्वामी जी ने जो जवाब दिया वो ये है कि वस्तु का स्वरूप प्राप्त करना कठिन नहीं है, अभ्यास नहीं होने से जीव को कठिन लगता है। क्या बताया? क्या नहीं है? अभ्यास नहीं है। वस्तु कठिन नहीं है कि स्वयं को अनादिकाल से पर्याय के साथ त्रिकाली ध्रुव है। समझ में आ गई बात? अनादि से कब त्रिकाली ध्रुव चैतन्य पर्याय से भिन्न रहा? और बेंसरी की भाषा में कहे कि जीव को यदि सच्चा पुरुषार्थ हो तो चैतन्य वस्तु प्राप्त होती ही है, न हो तो 14 ब्रह्मांड। ये इतनी सी जरूरत है, कितनी सी, कि जो उपयोग बाहर में भटकता है उसको अंतर्मुख होने पर, बात समझ में आ गई, कि चैतन्य वस्तु अनुभव में आएगी आएगी और अवश्य आएगी। क्यों नहीं आए है? कोई पर वस्तु को प्राप्त करना हो तो हिंदी में एक कहावत है, दूसरे का घर हो तो खासने का डर और अपना घर है तो कुछ भी कर, ये कहावत है। समझ में आ गई बात? दूसरे का घर हो तो खासने का डर है और अपना घर है तो कुछ भी, कि चैतन्य वस्तु कोई पर नहीं, स्वयं है, उसकी प्राप्ति न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 14 ब्रह्मांड रीते हो जाए शून्य हो जाए। कि चैतन्य वस्तु की प्राप्ति के लिए कि वो शुद्ध चैतन्य वस्तु मैं हूँ उसका अभ्यास करें, अभ्यास नहीं है इसलिए दुर्लभ है। और यहाँ की भाषा में कहे तो बाहर के पक्ष दुनिया भर के पड़े हैं, यहाँ की भाषा में कहे तो जीव के वो इतने पक्ष पड़े हैं पूछो मत है? असंख्यात जाति के असंख्यात लोक प्रमाण, करणानियोग की भाषा में कि असंख्यात लोक प्रमाण शुभ भाव, असंख्यात लोक प्रमाण अशुभ भाव, असंख्यात लोक प्रमाण शुभ भाव अशुभ भाव, और सब में पक्ष पड़ा हुआ है। तो पक्ष कैसा चाहे जैसा हो, प्रत्येक पक्ष के साथ राग के, प्रत्येक पक्ष के साथ राग है और उस राग के साथ मिथ्यात्व है। बात समझ में आ गई? ज्ञानी के पक्ष के साथ अस्थिरता वाला राग है, मिथ्यात्व वाला राग नहीं है। ज्ञानी के भी राग है, पक्ष है, लेकिन उसके साथ मिथ्यात्व वाला राग नहीं है। अज्ञानी के पक्ष के साथ जो राग है उसमें मिथ्यात्व सहित वो राग है। जीव को अनंत पक्ष आए, यहाँ बिठा दिया विद्वान मान लिया, नीचे बैठा दिया श्रोता मान लिया, मंदिर में गया पुजारी मान लिया। अरे अपने बताने की ये तो उदाहरण मात्र है, अपनी अपनी जान लेना कि परिणति कितने पक्षों में अटकी पड़ी है, कितने विकल्पों में अटकी पड़ी है। पक्ष और विकल्प शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा का नहीं हुआ, बाकी सब हो गए। नहीं है बात समझ में? स्वामी जी के निमित्त से, पुण्य के उदय से, ज्ञानावरण के क्षोभक्षम से थोड़ी सी क्षोभक्षम की योग्यता बढ़ गई, बात समझ में आ गई, तो अपने आप को विद्वान मान लिया। हाँ, 10-20-50 लाख स्वामी जी की भाषा में धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई तो अपने आप को सेठ मान लिया। अरे जगह जगह जीव की परिणति अटकी पड़ी है, परिणति का अटकना यही पक्ष है। चाहे ज्ञान परिणति हो, चाहे चारित्र की परिणति हो, बाहर अटक जाना और अपने आप को त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य स्वीकार नहीं करना यही पक्ष है। पक्षातिक्रांत, पक्षातिक्रांत का मतलब तो हो गया पक्ष से जीव बाहर चला गया, दूर गया, पक्ष को उसने छोड़ दिया। लेकिन पक्ष का मतलब क्या? कि अनादिकाल से जीव पक्ष में ही पड़ा हुआ है और जब तक पक्ष है तब तक विकल्प है, तब तक मिथ्यात्व है, तब तक संसार है। और सबसे बड़ी बात कि तब तक संसार में रखड़ना है। मोक्ष की यात्रा शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा से प्रारंभ होती है और शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा पर ही समाप्त होती है, और कोई विशेष चर्चा नहीं है। समझ में आ गई बात? ये भाषा भी स्वामी जी के निमित्त से सामने आई है कि भगवान आत्मा से मोक्ष की बात प्रारंभ होती है और भगवान आत्मा पर ही समाप्त होती है। शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा से मोक्ष की यात्रा प्रारंभ होती है और पूर्ण भी कब होती है? कि शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा पर ही पूर्ण होती है। इसकी बीच की दशा साधक दशा है। साधक दशा में राग है लेकिन राग का पक्ष नहीं है। साधक दशा में राग तो है लेकिन राग का पक्ष नहीं है। स्वामी जी की भाषा में कहे तो ज्ञानी को राग तो होता है लेकिन राग का राग नहीं होता। ज्ञानी को राग तो होता है लेकिन राग का राग नहीं होता है। कि मोक्ष की दशा या स्थिति कब प्रारंभ होती है? अभी तो जीव संसार में ही आनंद कर रहा है, अभी तो संसार से ही थकान नहीं है। सब पुण्य का उदय है, पुण्य के भोगने में मस्त है। कि पुण्य से भिन्न शुद्ध चैतन्य ज्ञायक परमात्मा अनादिकाल से है, आज भी है, उसका पक्ष नहीं आया। यहाँ शिविर में आ गया तो मान लिया मैंने कुछ कर लिया, और लोग तो आए भी नहीं। स्वाध्याय भवन में आने से पहले ये मान लिया कि और तो आते नहीं, मैं तो आ गया टाइम पर आ गया। क्यों नवीन भाई है? कहाँ कहाँ जीव अटका पड़ा है, है? रमेश भाई, माणिक भाई, स्वामी सोनगढ़ के उदाहरण है, प्रवचन सुन लिया, रमेश भाई बिस्तर लगाने लगे सोने के लिए। ये रमेश भाई जो यहाँ थे, तो कहे भाई बिस्तर लगा दूँ। तो माणिक भाई कहते हैं कि ऐसी बातें सुनकर के भी सोने की ही सोचता है तो जागेगा कब? आइए ये बातें दुर्लभ है। और स्वामी जी जैसे का सानिध्य तो इस समय है नहीं, वो होता तो चौथे काल जैसी बात होती है। और काम तो अपना करना है, बिना काम किए मरना नहीं है। तो पक्षातिक्रांत कैसे हो? कि पक्षातिक्रांत होने के लिए इसमें विधि भी बताई है कि पक्षातिक्रांत का सरल सा अर्थ ये है कि सभी विकल्पों का नाश कैसे हो। विकल्प तो अपने आप नष्ट होते हैं, विकल्पों का नाश नहीं करना पड़ता। विकल्प होने वाली वस्तु अपने आप होती है, करना नहीं पड़ता। होने वाली जो वस्तु है, जीव को देखो इतना ही अभी अभ्यास नहीं है कि भाषा वर्गना भी स्वतंत्र निकल रही है, आना जाना शरीर का परिणमन ये भी स्वतंत्र है। इन सब में कर्ता बुद्धि इस जीव ने डाल रखी है। इन सब का मैं ज्ञाता हूँ, 143वीं गाथा का आशय यही है कि जैसे केवली भगवान विश्व को जानते हैं उसमें व्यवहार और नय की विषय वस्तु भी आ जाती है, वैसे ही ज्ञानी भी व्यवहार और निश्चय को जानते हैं, व्यवहार और निश्चय का पक्ष नहीं करते। व्यवहार और निश्चय का पक्ष छोड़ करके त्रिकाली चैतन्य वस्तु की अनुभूति करते हैं। इसलिए अंत में सिद्धांत ये निकाला, अनुभूति ही पक्षातिक्रांतपना है। क्या निष्कर्ष निकाला? अनुभूति ही पक्षातिक्रांतपना है। तो वो पक्षातिक्रांतपना मतलब क्या? कि चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा सो मैं, चैतन्य ज्ञायक ध्रुव चैतन्य पदार्थ वो मैं, इसके अलावा जो कुछ है वो सब विकल्प है। और यदि चैतन्य पर दृष्टि है तो अस्थिरता का विकल्प है, चैतन्य पर दृष्टि नहीं है तो मिथ्यात्व वाला राग अंश वाला विकल्प है। चैतन्य पर दृष्टि होने पर वह विकल्प ज़्यादा देर संसार में नहीं रुलाएगा, लेकिन मिथ्यात्व के साथ का विकल्प है तो ये जीव संसार में ही रुलेगा। पक्ष का मतलब क्या है? इतनी सी बात पूरी करते हैं कि पक्ष अतिक्रांत, कि पक्ष से अतिक्रांत होने पर जैसे दरवाजा खोलने पर जिन मंदिर में स्थित प्रतिमाएं दिखाई देती है उनके दर्शन होते हैं, ऐसे ही पक्ष का मतलब बंद दरवाजा, और उसके जाते ही जैसे दरवाजा खुलते ही मंदिर में स्थित जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं उनका दर्शन होता है, ऐसे ही पक्ष नष्ट होते ही, ये तो उदाहरण है, बात समझ में आ गई। और उदाहरण हमेशा एक देश होता है, यहाँ तो खोलना पड़ता है, हैं? और वहाँ उस पर दृष्टि जाते ही अपने आप खुल जाता है। उदाहरण में तो क्या है कानू भाई, दरवाजा खोलना पड़े तब जाकर के वो दिखे। यहाँ उदाहरण से सिद्धांत अलग है कि वो मूर्तियां दिखते ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सिद्धांत ये है कि चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा दिखते ही है? पक्ष अपने आप चला जाता है, वो कहाँ रहता है इसका कोई पता नहीं चलता है। उसकी विधि क्या है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।